ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का आह्वान करते हुए, हमारे अति प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हुए, परम आदरणीय निर्मला दीदी जी, आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय सुमन बहन जी और सभा में उपस्थित सभी फरिश्ता भाई और बहनों, आज मुझे परम सौभाग्य मिला कि ऐसी फरिश्तों की महफिल में कुछ अपने अनुभव सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं कुछ अपने जीवन के कुछ अच्छे अनुभव आपको शेयर करूंगा। जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो एक अनुभव का रूप ले लेती है। ब्राह्मण बनने के बाद हर आत्मा को अपने अपने तरीके से अनुभव तो होते ही रहते हैं। बाबा अपने बच्चों को कई प्यारे प्यारे अनुभव कराता है। सभी अनुभवी आत्माएं बैठी हैं, फिर भी आप सभी अनुभवी आत्माओं के बीच में भी थोड़े से अनुभव हम आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना ज्ञान में कैसे बाबा का परिचय मुझे मिला और ज्ञान में मैं कैसे आया, वहां से मैं शुरू करता हूँ, बाबा के परिचय से। फिर बाद में मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव बताऊंगा। सबसे पहले हम जब ज्ञान में बाबा का परिचय मिला तो मुझे भी, कई लोगों को अलग अलग तरीके से बाबा का परिचय मिलता है। कोई प्रदर्शनी देखते हैं, कोई भाई बहन किसी को ज्ञान में ले आता है, कोई किसी प्रकार से अलग अलग परिचय मिलता है। लेकिन मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे बाबा ही ज्ञान में लाए। जनवरी का मास था और हम बहुत छोटे थे। मैं समझता हूँ मेरी उम्र कम से कम 14-15 साल की रही होगी और हम स्टडी कर रहे थे, तो पढ़ाई करते थे, तो बोर्ड की परीक्षाएं थी। तो हमारे लौकिक पिताजी प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल होने के नाते हर एक माँ बाप को ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छी डिवीजन से पास हो। तो मेरे लौकिक पिताजी को भी ये था कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से पास हो, तो रोज मेरे को 4 बजे जगाया करते थे। पिताजी का रूम नीचे था और मेरा रूम ऊपर था, तो हम ऊपर सोते थे तो पिताजी नीचे से ऊपर आते थे और मेरे को रोज 4 बजे जगाया करते थे और जगाकर बिठा देते थे, पढ़ाई करो। तो इस प्रकार से सिलसिला चल रहा था। जनवरी का मास था तो अचानक ही एक बार क्या हुआ कि ऐसे हम पढ़ते पढ़ते ही रात को, तो मेरे बेड के पास ही टेबल थी, उस जमाने में एक अलार्म घड़ी थी, घंटी वाली घड़ी रखी हुई थी और टेबल पे किताबें वगैरह रखी हुई थी। तो ऐसे ही हम पढ़ते पढ़ते किताब ऐसे ही रखी और ऐसे हम सो गए। तो जनवरी का मास था तो खिड़कियां दरवाजे सब बंद था और कम्बल ओढ़ कर हम सो रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, 2:30 बजे के करीब, मेरे को अच्छी तरह याद है घड़ी रखी हुई थी, तो 2:30 बजे करीब किसी ने आकर मेरे को हाथ लगाया, उठो उठो उठो। 3 बार हाथ लगाया और 3 बार आवाज आई। और जैसे मेरे को आवाज आई, तो आवाज आते ही मैं एकदम उठा, देखा तो कमरे में तो कोई नहीं था, तो मैं एकदम डर गया। उम्र भी छोटी थी, मैं 14-15 साल का ही था। तो मैंने देखा कि मेरे को किसने हाथ लगाया, तो मैंने देखा तो पूरे रूम में कोई नहीं था, बेड के नीचे देखा कोई नहीं था। तो मैं एकदम से कम्बल ओढ़ कर ऐसे ही बेड पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि किसने मेरे को जगाया। तो देखा तो कमरे में तो कोई नहीं, तो धीरे धीरे मेरे पैर की तरफ से मेरा शरीर धीरे 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 सुन होने लगा ऑटोमेटिक, और पूरा शरीर एकदम बर्फ से भी ज्यादा एकदम सुन हो गया, एकदम इतना ठंडा हो गया, एकदम बिल्कुल बर्फ से भी ज्यादा। और जैसे ही धीरे 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 ऐसे ठंडा होता गया और एकदम मैंने देखा कि मैं इस शरीर से बाहर हूं, जैसे बीच में हूं, ना नीचे ना ऊपर, और मैं इस शरीर को देख रहा हूं। और ऐसे संकल्प आया कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था उस समय, तो ज्ञान नहीं था कि आत्मा अलग है शरीर अलग, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने इस शरीर को देखा और मैं पूरे रूम को मैं देख रहा था। 2:30 बज रहे थे, मेरी किताबें रखी थी, पूरा घड़ी रखी हुई थी, सब कुछ ऐसे देखता रहा। और देखते देखते ही क्या हुआ कि मैं स्लोली धीरे 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 रूम से बाहर निकला, और रूम से बाहर निकलने के बाद ऐसे ही मैं स्लोली धीरे 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 ऊपर जाने लगा, जाता रहा। और मैंने अपने आप को ऐसी जगह पाया जहां बिल्कुल सफेद, एकदम गोल्डन सफेद, एक अलग ही प्रकार का प्रकाश था। वो एक अलग ही प्रकार की रोशनी, हम ये सफेद देखते हैं वो सफेद नहीं है, वहां तो एक अलग ही प्रकार की रोशनी, बहुत सुंदर रोशनी थी, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत ही इतना अजब प्रकार की वहाँ एक प्रकाश प्रकाश था। तो उस प्रकाश के अंदर मैंने आपको अपने आप को पाया और मैं वहां ऐसे घूम रहा हूँ और घूमते घूमते मैंने देखा कि बहुत अंदर से जैसे कि एकदम फाउंटेन फूट गया। इतनी खुशी, इतना आनंद कि मैं बहुत गदगद होने लगा और धीरे 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 मैं उसमें घूमने लगा और इतना आनंद आ रहा था कि मैंने देखा कि मैं बहुत अलग ही मतलब वहाँ, और मेरे को कोई कुछ दिखा नहीं, बस मैं ही वहाँ उस प्रकाश में घूम रहा था। तो घूमते घूमते मैंने देखा तो ऐसे ही लौकिक पिताजी का रोज का ट्रेन था, तो चार बज गए। तो 4 बजे पिताजी आए और नीचे कट कर, तो मैंने ऊपर से ही पिताजी को देखा और देखते ही एकदम मैं जोर से आकर शरीर में गिरा। और जैसे मैं शरीर में गिरा एकदम मेरे को जोर से झटका लगा और झटका लगते ही अब मैं, पिताजी बाहर से खटखट कर रहे थे, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं अभी उठ गया हूँ, लेकिन आवाज नहीं थी। तो मैं थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। मैंने देखा हाथ पैर वगैरह, फिर धीरे धीरे जैसे मैं नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल होने के बाद जैसे मैं उठा और बाहर निकला और नीचे आकर पिताजी को बोला कि मैं शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो पिताजी को कुछ समझ में आया नहीं, वो सोचे ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे शरीर से बाहर निकला और मैंने एक बहुत सुंदर एक प्रकाश की जगह में अपने आप को देखा। तो उन्होंने कहा चलो आपने कोई सपना देखा होगा, पढ़ाई करो। तो पिताजी को कुछ समझ में आया नहीं, मैंने माँ को बताया, फिर बड़े भाई को बताया, भाभी जी को बताया। मेरा मन ऐसा कर रहा था अंदर से कि मैं ऐसे एक घर, मेरा राजस्थान में कोटा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कोटा में सभी व्यक्ति को जाके बताऊं। इतनी खुशी मेरे अंदर कि मेरा एक रोम 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 खुश हो रहा था, ऐसा अंदर से आ रहा था मैं सभी को जाके बताऊं कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं ऐसे। तो धीरे धीरे मैं, तो पिताजी ने कहा कि जाओ आप पढ़ाई करो। तो मैंने कहा भाई इनको कुछ समझ में आया नहीं, और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैं वापस ऊपर आके रूम में बैठ गया, और रूम में आकर बैठते ही थोड़ी देर में बैठा था कि बैठने के बाद ही फिर धीरे 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 फिर मैं वापस इस शरीर से बाहर निकला, और शरीर से बाहर निकलने के बाद सीधा मैंने अपने आप को सेंटर पे पाया। उस समय तो पता नहीं था कि सेंटर है, तो वहां लक्ष्मीनारायण का चित्र लगा हुआ था, श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था, एक बहुत सुंदर बाबा का कमरा था, बहनों का कमरा, और सब लोग बैठे हुए थे, और एक बहन ऐसे लेकर मुरली सुना रही थी। तो हमको पता नहीं था कि मुरली है, तो ऐसे देखा और देखने के बाद ऐसे आवाज आई आपको यहाँ आना है। तो फिर मैं वापस शरीर में आया, और शरीर में आते ही फिर मैं थोड़ी देर में झटका लगा शरीर में आया, फिर मैं उठा। उठने के बाद मैं स्नान वगैरह करके तैयार होकर ऐसा लग रहा था फटाफट मैं वहां पहुंचूं, और मैं वहां गया। तो जैसे ही मैं सेंटर पे पहुंचा तो देखा सचमुच में वहां एक बहन ऐसे मुरली लेके सुना रही है और सब लोग बैठे हैं। अब मेरा मन कह रहा एकदम अंदर जाऊं, एक मन कह रहा कि नहीं कोई पूछेगा कैसे आए। तो मैं गेट पे खड़ा था और मैं सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि पिताजी बोलते थे किसी के घर जाओ तो पहले पूछ के जाया करो। तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि अंदर जाएंगे तो पूछेंगे भाई क्यों आए हो। तो मैं अंदर गया नहीं, गेट पे खड़ा रहा। ऐसे करते करते मेरे को 7:30 बज गए। तो फिर मेरा स्कूल का टाइम हो गया, तो थोड़ा पिताजी से थोड़ा डरते भी थे। मैंने कहा पिताजी कहेंगे स्कूल नहीं गया, तो मैं फटाफट वहां से निकला और स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में जाकर बैठा, तो बैठे बैठे मैं शरीर से तो बैठा हूं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा कि मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेरा कुछ भी पता नहीं है, बस मैं शरीर से बैठा हूं लेकिन शरीर से अलग हूं, शरीर में हुई नहीं, जैसे शरीर से अलग वैसे देख था। ऐसे करते करते कितने पीरियड चेंज होते गए, ऐसे 12:30 बज गए और छुट्टी भी हो गई। लेकिन 12:30 बजे तक मैं शरीर में ही नहीं था, बस शरीर से अलग ही था। जैसे छुट्टी हुई तो मैं उठा और मैं धीरे धीरे वापस आया। तो मैं चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शरीर में नहीं हूं, तो हल्के हल्के आराम से मैं वापस, मेरा मन कहा कि मैं चलो वापस सेंटर पे चलते हैं और देखेंगे वहां पूछेंगे किसी से क्या हो रहा है। तो जैसे मैं सेंटर पे आया तो वहां तो लॉक लगा हुआ था, तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मैंने कहा सुबह इतने लोग थे, अभी तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो फिर मैं ऐसे ही वापस मन से ऐसे ही वापस घर आ गया। घर आके बैठ गया, माँ ने कहा खाना खा लो, तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं था। मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। और जैसे ही कमरे में बैठा तो मैं बिल्कुल अलग हुई शरीर से, इतनी खुशी कि वो तो एक अलग ही, जैसे मैं अलग ही दुनिया में हूँ, शरीर में नहीं हूँ, अलग ही दुनिया में हूँ। ऐसे करते करते शाम को 4 बज गए, और 4 बजे करीब फिर मेरे को मन में हुआ कि कि नहीं मेरे को वापस सेंटर पे जाना है। तो फिर मैं उठा और फिर वापस सेंटर पे गया तो देखा, तो मैंने घंटी बजाई तो एक छोटी बहन थी वो निकली, उसके हाथ आटे में हो रहे तो आटा गूंद रही होगी। तो वो जैसे आई, आने के बाद उसने पूछा कैसे आए, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं कैसे आया हूँ, मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बहन ने बोला कि चलो आ जाओ, फिर वो अंदर लेके आई और उन्होंने बाबा के कमरे में मेरे को लेकर गई। तो वो बाबा का कमरा मैंने सुबह देख ही लिया था, क्योंकि मैं सुबह सेंटर पर आया था तो सेंटर पर देख लिया था बाबा। तो उन्होंने क्या किया, लाल लाइट जलाई और मेरे को बोला योग करो। तो मुझे तो योग वोग तो आता नहीं था, मैं तो योग का नाम भी पहली बार ही सुना था। तो बहन जी ने सफेद लाइट कर दी, वहां बिल्कुल बाबा का टॉर्च लाइट का चित्र लगा था, कुछ भी नहीं था, सफेद पर्दे लगे हुए थे। तो अब मैं बैठ गया वहां और बहन जी तो बस केवल लाल लाइट करके मेरे को चली गई। अब वो तो अंदर चली गई, मैं बैठा रहा बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में थोड़ी देर बैठा और टॉर्च लाइट के चित्र को देखता रहा। तो देखता रहा तो टॉर्च लाइट के चित्र जो ब्रह्मा बाबा का था, उसमें से जैसे किसी को बुलाते ना आंखों से इशारा करते, तो बाबा आंखों से जैसे इशारा कर रहा हूं मेरे को, बुला रहा हूं बच्चे इधर आओ, ऐसे जैसे किसी को बुलाते हैं ना ऐसे आंखों से इशारा कर रहा। फिर मैं खड़ा हुआ तो चित्र पे हाथ घुमाया थी, मैंने कहा तो चित्र है। फिर मैं आके बैठ गया, फिर देखा थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही इशारा कर रहा है बाबा। फिर मैं आकर बैठ गया, ऐसे दो तीन बार मेरे साथ हुआ। मैंने कहा पता नहीं यहाँ कोई जादू है, पता नहीं कुछ ऐसा हो। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में बैठा और फिर वापस शरीर से बाहर निकला और वापस जैसे मैं सुबह गया था ऐसे ही मैं वापस सुफनतन में पहुंच गया। और वहां बिल्कुल एकदम प्रकाश 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 प्रकाश, तो वहां मैं घूमने लगा। और ऐसे ही घूमते घूमते मैंने बहुत खुशी का अनुभव कर रहा था, तो वहां खुशी के अनुभव करते करते ऐसे 6 बज गए। और 6 बजे करीब बहन आई और बहन ने आकर सफेद लाइट की, तो एकदम मैं जोर से आके गिरा। और गिरते ही बहन ने पूछा क्या हुआ, तो काफी देर तक आवाज नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और बहन को बताया कि फिर मैंने पूरी स्टोरी बहन जी को बताया कि मैंने कहा ऐसे 2:30 बजे से मेरे साथ ऐसे चल रहा है कि कभी मैं शरीर में आता हूँ शरीर से बाहर निकलता हूँ। तो बहन जी को तो ज्ञानी आत्मा थी, उन्होंने कहा कि आपको परमात्मा ने बहुत अच्छे अनुभव कराए शिव बाबा ने। तो उन्होंने फिर मेरा पूरा बायोडाटा पूछा, आपका कहाँ रहते हो क्या करते हो सारा पूछा। तो मेरे लौकिक पिताजी को बहन जी जानती थी पहले से, तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने पूरा पूछने के बाद मैंने कैसे ऐसे हम स्कूल गए, ऐसे ऐसे मैंने सेंटर देखा, सारा सुबह 2:30 बजे से पूरा जो वर्णन था बहन जी को मैंने सुना दिया। सुनाने के बाद बहन जी ने थोड़ा सा नमकीन और टोसा हमको खिलाया कि हमारी दादी ने मधुबन से भेजा है। तो मेरे को तो एकदम आश्चर्य लगा कि बहन जी इतनी बुजुर्ग है और इनकी दादी कितनी बुजुर्ग होगी। तो मैं सोचा मैंने कहा आपकी दादी जिंदा है क्या अभी तक भी? तो हमको पता नहीं था भाई लोकिंग में तो दादी उसको ही कहते हैं जो पिताजी की माँ हो। तो मैंने कहा भाई ये बहन जी इतनी बुजुर्ग, इनकी दादी अभी तक भी जिंदा है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी दादी माउंट आबू में रहती है। और तो उन्होंने माउंट आबू गए थे तो वहां से ये टोली है। इनका ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बहन जी ने कहा। फिर बहन जी ने बहुत तारीफ किया, किसी बच्चे की तारीफ करते तो खुशी तो मिलती है, तो हमको भी बहुत खुशी हुई बहन जी हमारी तारीफ कर रही थी, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, बाबा ने आपको देखो कितना अच्छा अच्छा अनुभव कराया है, लोग शरीर से बाहर निकलने कितनी तपस्याएं करते हैं, आपको तो पहले दिन ही बाबा ने इतना अच्छा अच्छा अनुभव करा दिया, आप रोज। तो बहन जी ने कहा आप रोज आया करो। तो उन्होंने कहा कि आप कितने बजे आते हो? मैंने कहा मैं 7:30 बजे स्कूल आता हूँ जाता हूँ। तो ऐसा करो 7 बजे रोज आ जाया करो और फिर जैसे टाइम मिले फिर वापस चले जाएगा। तो उसी दिन से जैसे दीदी ने कहा तो कि सुबह रोज 7 बजे आ जाया करो, तो हम सुबह रोज 7 बजे सेंटर जाते और थोड़ी देर बैठते मुरली सुनते। मुरली तो कुछ समझ में आती नहीं थी क्योंकि कोर्स वोर्स तो हमने कुछ किया ही नहीं था। दूसरे दिन से हम सेंटर चालू हो गए और बहन जी ने हमको अलाउ कर दिया भाई तुम तो रोज सुबह सुबह आ जाया करो। तो बहन जी ने कहा था कि तुम आगे बैठा करो, तो मैं आके मुरली में आगे बैठ जाता था, थोड़ी देर सुनता था और 7:25-20 तक मैं निकल जाता था। और जैसे मैं बाहर निकलता था तो बहन जी ने बोल रखा था छोटी बहन को कि जैसे बाहर जाए इसको कुछ ना कुछ दे दिया करो, कभी लड्डू कभी तोसा कभी नमकीन कुछ ना कुछ टोली देती थी बहन जी। तो वो भी एक लालच था मेरा सेंटर जाने का कि भाई रोज बहन जी कोई ना कुछ खिलाने कुछ देती है। तो ऐसे फिर हम लेके स्कूल चले जाया करते थे। इस प्रकार से हमारा ज्ञान में आने का पार्ट खुला। फिर जैसे संडे होता था तो संडे के दिन फिर भाई बहन इकट्ठे तो स्कूल तो जाना नहीं होता, तो मैं रुकता था, फिर लोगों से पूछता था, फिर मुरली सुनते थे, फिर बहन जी भी फिर हमको बताती थी ज्ञान के बारे में, थोड़ा आत्मा के बारे में, परमात्मा थोड़ा थोड़ा सा से बताती थी, क्योंकि उम्र छोटी थी तो बहन जी ने भी इतना थोड़ा सा मेरे को ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, बस केवल प्यार में चलाते रहे। तो ऐसे करते करते ज्ञान में चलने लगे, तो कोर्स तो आज तक भी नहीं कराया बहन जी ने, लेकिन बस धीरे धीरे सेंटर पे आते आते और बस मुरली सुनते सुनते ही पूरा ज्ञान समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे जब धारणाओं की बातें आई तो बहन जी ने कहा कि आपको बाहर का खान पान नहीं करना है, तो पता नहीं कुछ बाबा की ऐसी मेरे को कृपा रही कि जैसे बहन जी कहती गई मेरे जीवन से सब कुछ छूट गया। बहुत छोटी उम्र थी, बहन जी ने कहा आपको बाहर का नहीं खाना है। मैंने कहा हाँ बहन जी, तो एकदम मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर बहन जी ने कहा कि आप अपने हाथ का खाना बना के खाओगे। मैंने कहा ठीक है बहन जी। तो बहन जी कभी हमको क्या करती थी, सब्जी बना के टिफिन में देती थी कि रोटी अपने हाथ से बनाना, तो मैं घर पे जाके रोटी बना लेता था और सब्जी बहन जी देती, कभी क्या करती थी रोटी बना के देती थी, सब्जी अपने हाथ से बनाना। तो इस प्रकार से बहन जी मेरी बहुत पालना करती थी और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम ज्ञान में चलने लगे। फिर धारणा भी हो गई, तो फिर एक सबसे बड़ा जो कुमारों को विघ्न आता है, शादी का विघ्न आने लगा, जैसे जैसे बड़े होने लगे शादी का विघ्न आने लगा। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी को जो था धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनको मैंने साफ साफ बोला कि भाई मेरे को तो शादी नहीं करना है, और मैं तो उनको पता लग गया था कि रोज सुबह जल्दी जाता है और ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लग गया है, तो धीरे धीरे परिवार में पता लग गया, बाहर का खाना पीना सब बंद कर दिया था मैंने, सब कुछ कुछ भी वो लाते थे तो मैं नहीं खाता था, मैं मना कर देता था मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, तो परिवार मैं तो सब पता लग ही गया था कि सब जाने लगा, तो हमने लौकिक पिताजी को साफ मना कर दिया कि भाई हम तो शादी नहीं करेंगे और हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन लौकिक परिवार वालों ने बहुत विरोध किया, जैसे बुआ जी है, मासी जी है वगैरह, इन लोगों ने, मेरी मां ने, सब ने विरोध किया, नहीं आपको शादी करनी है, नहीं आपको शादी करनी है। लेकिन पिताजी के सहयोग से फिर हम इस पेपर में भी पास हो गए, और पास होकर फिर धीरे धीरे तो ज्ञान में चलने लगे। 95 में चंद्रमणि दादी जी कोटा गए हुए थे, तो कोटा जाने के बाद जब सेंटर पे हम कुमार थे तो बहुत सेवाएं कर रहे थे, तो दादी जी ने मेरे को पूछा कि घनश्याम क्या करते हो। मैंने कहा दादी मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, हमारे लौकिक फैक्ट्री थी कोटा स्टोन की, तो उस जमाने में कोटा स्टोन का बहुत नाम था और बहुत पैसे भी मैं कमाता था, तो फैक्ट्री चलाता था, तो फैक्ट्री चलाता, तो दादी ने पूछा क्या क्या करते, तो मैंने सब कुछ बताया मैं फैक्ट्री चलाता हूँ ये वो वगैरह। तो दादी ने कहा क्या करोगे कमा के। मैंने कहा दादी मैंने तो कभी सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप ज्ञान सरोवर आ जाओ और आपको फैक्ट्री छोड़ दो। तो जैसे ही दादी ने बोला, उसके दूसरे दिन ही हमने पिताजी को कहा कि भाई हमको तो फैक्ट्री नहीं चलाना है और हम अब वापस हम अपने ज्ञान सरोवर में जाएंगे। तो उस समय फिर पिताजी का विरोध होने लगा कि आपको हमने अलग से रूम दे रखा है, हम आपको कोई रोकते नहीं, लेकिन घर नहीं छोड़ने का, आप ज्ञान में चलते रहो लेकिन घर नहीं छोड़ने का। लेकिन नहीं, मेरा तो मन में आ गया था, दादी ने कहा मतलब जाना ही है। तो फिर दादी को कहने के बाद हमारे जो जोन इंचार्ज थे ओम प्रकाश भाई जी इंदौर जोन के, उन्होंने भी हमको बहुत फोर्स किया कि नहीं दादी को आपने हाँ किया आपको जाना ही है। तो फिर उनके दादी के कहने के अनुसार फिर हम ज्ञान सरोवर में आए और 95 में फिर ज्ञान सरोवर में आकर ईश्वरीय सेवा में लग गए। तो ये तो हमारा ज्ञान का अनुभव रहा। अब एक विचित्र अनुभव जो हमारे जीवन में हुआ, जो सभी लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो तो एक अलग ही घटना थी। क्या है कि हम रोज यहाँ वॉकिंग किया करते थे सुबह, मेरा एक रूटीन था, हमारे एक भाई है रोशन भाई, वो मेरे को 2 बजे रोज जगाया करते थे और 2 बजे से 4 बजे से हम दोनों बैठकर योग करते थे, 4 बजे फिर नहा धोकर 5 बजे हम वॉकिंग करने निकल जाया करते थे। तो बाहर वॉकिंग कर यहाँ से देलवाड़ा मंदिर तक मैं दौड़कर जाता था, देलवाड़ा मंदिर से वापस आता था, ये रोज का मेरा रूटीन था। तो 26 दिसंबर की घटना है, तो ऐसे ही हम रोज की रूटीन के अनुसार गए और जैसे ही बाहर निकला तो वापस जब हम लौट रहे थे, तो आपने ज्ञान सरोवर के बाहर तो देखा होगा जो टर्न आता है, टर्न के बाद से जैसे ढलान आता है, तो ढलान के पास की बात है, वहां किनारे पे भालू खड़ा हुआ था, लेकिन हल्का अंधेरा था तो हमको पता नहीं लगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में थोड़ी हल्की अंधेरा सा रहता है, तो मेरे को पता नहीं लगा कि वो खड़ा है। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, पहुंचते मैंने देखा कि भालू है, तो उसने फट लगा से एकदम हाथ मारा और मेरे पीछे जोर से हाथ मारा, तो जैसे ही उसने हाथ मारा मैं एकदम जोर से जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरते ही उसने क्या किया, सीधा मेरे ऊपर आया और दोनों हाथों से मेरे को पकड़ लिया, और जैसे हाथों से पकड़ लिया और जैसे मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा तो भालू है, तो उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश किया। तो मैंने एक हाथ से उसका गला पकड़ा और ऊंचा किया, और जैसे ऊंचा किया तो उसने चढ़ लगे से मेरे मुंह यहां से सिर को खाने लगा, और जैसे उस शरीर खाने लगा तो इतना पेन होने लगा, चढ़ 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 वो दांतों से चबाने लगा, पूरा ही सारा खा लिया था उसने। और दूसरा पीछे से आया, उसने मेरा एक हाथ पकड़ लिया, फिर तीसरा आया, उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया, और मैं जमीन पे पड़ा हूं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और मेरी हालत ऐसी हो गई, और मैं पड़ा पड़ा चिल्लाऊं बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, धक 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 खून बह रहा है और वो चढ़ चढ़ चबा रहा है दांतों से, इतना पेन, इतना दुख। मैंने कहा भाई बाबा क्या हो गया ये अचानक ही, हमको क्या पता था कि भाई वॉकिंग करने से ऐसा हो जाएगा। इतना वो उसके दांत इतने तीखे तीखे थे और वो तो एकदम चबाने लगा, और एक ने हाथ पकड़ लिया और हाथों को चबाने, पूरी नसें मेरी हाथों की कट गई थी, और एक पैर को चबा रहा, इतना बाबा बाबा, मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। ऐसे पता नहीं बाबा ने क्या सुना या बाबा ने क्या देखा, उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी देर ये घटना चली, वो तीनों के तीनों छोड़ के रोड पे जाने लगे, और जैसे वो जाने लगे मैंने देखा ये तो चले गए, तो फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैं ठीक हूं, तो पूरा खाल निकाल दिया था, पूरी चमड़ी बाहर नीचे लटक गई थी, ये पूरा गाल फाड़ दिया था, कान तक लटक गया था गाल, मेरे पूरा हाथ का मांस नीचे लटका हुआ था, पैर पूरा फाड़ा हुआ था, पूरा ऐसा बहुत अजीब स्थिति होगी, तो धक धक खून बह रहा था, पूरा खून में पूरे कपड़े हो गए थे, आंखों में भी खून आ रहा था। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, फिर मैंने एक हाथ से इसको चमड़ी को पकड़ा और ऐसे पकड़ा ऊपर से करके, एक हाथ से गाल पकड़ा क्योंकि पूरा लटका हुआ था, गाल पकड़ा, और फिर मैं धीरे 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 कोशिश किया मैं चलूं, तो धक धक खून आ रहा था, तो चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि पैर का पूरा मांस लटक गया था, हाथ भी पूरा मांस लटक गया था, इतना स्थिति खराब कर दी थी, सभी जगह से सारी जगह से फाड़ दिया था पूरे शरीर को। फिर मैं धीरे 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 कोशिश करके गेट तक पहुंचा, अब गेट में पहुंचा तो गेट वाले मेरे को देखे तो कोई पहचान नहीं पा रहा क्योंकि शक्ल ही अलग हो गई थी, पूरी चमड़ी निकाल दी थी, पूरा गाल लटका हुआ था। तो मैंने आके गेट पे बोला भाई मेरा नाम घनश्याम है, अचानक मेरे को भालू ने अटैक किया है। तो जो भाई था वो भाई जल्दी से भाग के अंदर गया, और मैं सोचा कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी लेके आया, तो दो मिनट तक खड़ा रहा, वो आया ही नहीं। फिर मैं अंदर आया, मैं ट्रांसपोर्ट पर पहुंचा, ट्रांसपोर्ट पर पहुंचा, मैंने कहा भाई कोई ना कोई भाई मिलेगा तो उसको बोलेंगे मेरे को ग्लोबल पहुंचाओ, तो वहां भी कोई मिला नहीं क्योंकि टाइम ऐसा था, सुबह 6 बजे के करीब का टाइम था, सभी नहाने धोने के क्लास का टाइम होता है तो सभी नहाने धोने। तो फिर मैं धीरे धीरे वहां से सोचा ट्रांसपोर्ट भी कोई नहीं है, तो मैं फिर पैदल चला, मैंने सोचा मैं अपने कमरे में चलता हूं, एक भाई के पास गाड़ी है, मैं उसको बोलूंगा वो मेरे को ग्लोबल पहुंचा देगा। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ा, हमारा बेकरी डिपार्टमेंट है वहां तक मैं पहुंच गया था, और जैसे मैं चल रहा था तो अचानक मेरे को चक्कर आने लगे, मैंने कहा अब मैं गिरूंगा, तो मैं एकदम जमीन पर बैठ गया, और जमीन पर बैठा तो बीचों रोड में बैठा था, ऐसे खून बह रहा था, तो उधर से एक भाई आ रहे थे, डॉक्टर दीपक भाई, तो मैंने उनको आवाज दिया दीपक भाई मेरे को फटाफट ग्लोबल पहुंचाओ, और मेरे को भालू ने अटैक किया। तो फटाफट भागा, उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी लेके आया, और गाड़ी में मेरे को उन्होंने सहारा दिया और मेरे को गाड़ी में पटका, और एक हाथ से गाड़ी चला रहे, एक हाथ से उन्होंने ग्लोबल में फोन किया कि इमरजेंसी कैसे, जल्दी जल्दी आप है ना आई से तैयार करो। तो वो लेकर मेरे को हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल में जाके देखा तो वहां लोग खड़े होते, फिर फटाफट मेरे को निकाला गाड़ी से, स्ट्रेचर पे लेटाया, फिर मेरे को आईसीयू में लेकर गए। तो आईसीयू में लेकर गए तो वहां लेटा दिया, तब तक मेरे को अच्छी तरह से होश था, फिर उन्होंने लेटाया तो वहां एक दो डॉक्टर पहले से तैयार थे, उन्होंने फोन कर दिया था, तो डॉक्टरों ने कहा, तो एक डॉक्टर ने कहा इसके कपड़े खोलो, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं फटाफट कैंची से काट दो, और तो उन्होंने फटाफट कैंची से काट दिया, तो एक डॉक्टर ने बोला, फिर मेरे को एकदम ठंड लगने लगी, सर्दी के दिन थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी लग रही है, तो एक ने कहा इसको कंबल डालो, तो वो कहता है नहीं 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 कंबल नहीं डालो, मेरे को पूरा चेक करना है, आसपास हीटर लगा दो, तो उन्होंने 4 हीटर लगा दिए, और हीटर लगाने के बाद वो एक लिक्विड सा था तो सिर के ऊपर डाल रहे थे, वहां तक मेरे को होश है, वो पानी जैसा साफ कर रहे थे, लिक्विड डाल रहे थे, उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मेरे को पता नहीं है। तो फिर जो भाई थे हमारे साथ उन्होंने मेरे को बताया कि आपका 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, ये पूरा सिया हुआ है मेरा टोटल, ये सारा ये गाल वगैरह सारा, तो यहाँ का पूरी चमड़ी वगैरह फिर नहीं थी, उसने खा लिया था, तो फिर यहां से निकाल के जांग से फिर पूरा यहाँ लगाया उन्होंने डॉक्टरों ने। तो इस प्रकार से फिर बाबा ने वहाँ मेरी मदद किया और हम बहुत जल्दी सभी, जब ये घटना हुई तो ज्ञानेश्वर में और सभी लोगों ने वीडियो कर लिया था, फोटो खींच लिए थे, तो वो वायरल हो गया। तो मैं समझता हूँ करीब करीब सभी सेंटरों पर बाबा के बच्चों ने योग किया और योग का प्रभाव ऐसा रहा कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो बाबा की मदद और सभी भाई बहनों की मदद से हम बहुत जल्दी ठीक हो गए और आज आपके सामने भी है, क्योंकि वो स्थिति तो ऐसी थी, बचने का नाम भी नहीं था कि तीन तीन भालू जिसको चिपट जाए, एक व्यक्ति भी, एक भालू भी बहुत बड़ा होता है और तीन तीन भालू चिपट जाए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बाबा ने इतनी मदद किया और बाबा की मदद से हमको बहुत अच्छा हो गया। तो ये एक भालू का अनुभव था, आप सभी को ने बहुत प्यार से सुना, क्योंकि 8 भी बज गए हैं तो मेरा पूरा एक और अनुभव बहुत सुंदर था वो सुनाने वाला था, लेकिन 8 बज गए इसलिए मैं अभी सुना दूं। चलो एक छोटा सा अनुभव है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम सबसे पहले जब बाबा से मिलने आए, बाबा मिलन का एक छोटा सा अनुभव है, तो बाबा से मिलने आए थे 85 में। उस समय ओम शांति भवन में बाबा आया करते थे और तो उस समय ज्ञानेश्वर भी नहीं बना था और शांतिवन भी नहीं था, केवल पांडव भवन था और ओम शांति भवन में बाबा आया करते थे। तो हम बाबा से मिलने आए तो हमको उस समय इतना ज्ञान नहीं था, उम्र भी छोटी थी, 85 में 15 साल गए था, तो हमको ये ज्ञान नहीं था कि जोन अलग होते हैं, अलग ऐसे होता है। तो दीदी हमको लेकर आई तो उस समय 5 बजे करीब बाबा आ जाया करते थे और 8 बजे के करीब मुरली पूरी हो जाया करती थी। एक एक व्यक्ति स्टेज पे जाते थे और बाबा उनको वरदान देते थे और बाबा उनसे मिलते थे और सुबह 6 बजे करीब बाबा जाते थे। तो इस प्रकार से पूरा चलता था। तो हम बैठे तो सिलू बहन ने बोला कि राजस्थान के भाई बहन अभी बाबा से मिलेंगे, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो इंदौर जोन में आता था, तो हमको पता नहीं था कि इंदौर जोन अलग है या राजस्थान जोन अलग है। हम तो जैसे राजस्थान का नाम लिया, हम आके आगे आके बैठ गए, हमारी दीदी भाई बहनों को लेकर पांडव भवन में खाना खाने चली गई और हम तो आगे आके बैठ गए। तो राजस्थान के भाई बहन मिले तो एक दो भाई बहन मिले होंगे, उसी बाद मेरा नंबर आ गया और मैं बाबा के पास गया। और जैसे ही बाबा के पास गया तो बाबा ने मेरे को देखा और बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी और बाबा ने मेरे से क्वेश्चन किया, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा हाँ बाबा। फिर बाबा ने मेरे से दृष्टि दिया, फिर बाबा ने पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा हाँ बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दी, 3 बार एक ही क्वेश्चन बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, एक कदम हिम्मत का रखोगे 1000 कदम बाप की मदद मिलती रहेगी। तो 10 मिनट तक बाबा मेरे को वरदान देते रहे। फिर लच्छू दादी ने बाबा के हाथ में टोली दिया, तो उस समय बाबा अपने हाथ से टोली दिया करते थे, तो बाबा ने ऐसे किया और मैंने ऐसे हाथ किया, तो बाबा ने ऐसे और मेरा हाथ ऐसे और मैं बाबा को देख रहा हूं, लेकिन बाबा ने एकदम ऊंचा किया तो मेरे को टच हुआ और मैंने हाथ नीचे किया और बाबा की तरफ मुंह किया, तो बाबा ने ऐसे करके बड़े प्यार से मेरे को मुंह में टोली खिलाई। और जैसे बाबा ने मेरे को मुंह में टोली खिलाई, मेरे को इतनी खुशी हुई और ऐसा लगा जैसे मेरा एकदम रोम रोम पूरा खड़ा हो गया, बहुत खुश हो गया। और मेरे जैसे शरीर में मैं नहीं हूं, ऐसा मेरे को अशरीरीपन का अनुभव हुआ। और तो बाबा ने ऐसे आंख भी नीचे कर ली, हाथ भी नीचे कर लिया और मैं तो वहां से हिलू ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं शरीर में नहीं हूं। फिर सिलू बहन आई और मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को आगे किया, फिर देखे तो ऐसे ही मैं आके फिर वापस नीचे बैठा। फिर सिलू बहन ने अनाउंस किया, अभी इंदौर जोन के भाई बहन मिलेंगे। तुम्हारी दीदी आई और दीदी ने कहा, घनश्याम भाई हमको मिलना है। उनके दीदी में तो मिल लिया कि नहीं नहीं हमारा तो टर्न अभी है। फिर मैं बैठा और 2-4 भाई बहन के बाद फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं वापस बाबा के पास गया और स्टेज पे आया। फिर बाबा ने मेरे को देखा, बड़े प्यार से। फिर बाबा ने मेरे को 5-6 मिनट तक फिर वरदान दिए और फिर बाबा ने अपने हाथ से टोली दिया। लच्छू दादी ने बाबा के हाथ में, फिर बाबा ने अपने हाथ से टोली दिया और फिर मैं टोली लेके नीचे आ गया। तो ये छोटा सा अनुभव था कि बाबा के एक बार आए और बाबा से 2 बार मिलन हुआ, पहली बार जब बाबा से मिलने आए थे। तो चलो आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई जी, थैंक यू। अच्छा